आइए शुरू करते हैं। नहमतुहु व नुसल्लि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फौजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुय्यिसिर व तम्मिम बिल खैर। सूरत यासीन रुकू नंबर 3 आयत नंबर 33 से 50, 33 से 50। आइए ज़रा तर्जमा करते हुए इस पर गौर व फिक्र करते हैं। आज का पूरा सबक जो है ये अल्लाह की निशानियों से भरा हुआ सबक है। हकीकत यह कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में हर तरफ अपने वजूद के सबूत में बहुत सी निशानियाँ रखी हैं। अगर इंसान अंदर की आँख खोल कर इस दुनिया में जिए तो उसको हर तरफ अल्लाह ताला की ज़ात दिखेगी। बस ये सोच होनी चाहिए कि हम अपने मालिक को पहचानें। बहुत मसरूफ़ रहने और हर वक्त बातें करने और हर वक्त बेकार किस्म के मशगलों में मसरूफ़ होने वाले अल्लाह ताला की कायनात में फैली हुई इन निशानियों पर गौर नहीं करते। एक और बात करके आयत पे चलती हैं, और वो क्या है कि अल्लाह ताला ने हमारे सामने दो जहान रखे हैं। एक है इस कायनात की सूरत में जिधर से सुबह शाम मैं और आप गुजरते हैं। आज के सबक में इसकी निशानियाँ आप गिनेंगे और 1, 2, 3 करके नोट करेंगे और एंड पे बताइएगा कि आज के पूरे सबक में कितनी मुख्तलिफ निशानी है। निशानी जो है इसको अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ आयत कहते हैं, जो कि अभी आयत में आ रहा है। तो आइए देखते हैं और फिर इंशाल्लाह इसका तकाबुल करेंगे कुरान पाक की 6000 से ऊपर आयतों के साथ। क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम आयत 33, वायतुल्लहुमुल अर्दुल मैतह, और निशानी है उनके लिए मुर्दा ज़मीन में। क्या है निशानी? अहयैनाहा वखरजना मिन्हा हब्बन फमिन्हु याकुलून, हमने इसको ज़िंदगी बख्शी और इससे गल्ला निकाला जिसे ये खाते हैं। सबसे पहले लफ्ज़ निशानी पे गौर करते हैं। निशानी कैसे? आप देखिए यहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ है आयतुन। अगर आप इसी आयत के लफ्ज़ को पढ़ने के बाद जहाँ ये आयत 33 ख़त्म होती है तो वहाँ अपने कुरान पाक में देखिए, तो अमूमन हमारे मुसहफ़ जो होते हैं उसमें एक आयत के पूरा होने के बाद दूसरी आयत के बीच में क्या होता है? एक गोल दायरा होता है ना, आपके पास भी है। कहीं छोटा आयत दायरा होता है, कहीं बड़ा होता है। ये दायरा असल में वो जो लफ्ज़ आयतुन की गोल ता है ना, ये निशानी है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी और आपके नसीब में भी हुआ तो आप उलूमुल कुरान पढ़ेंगे तो कुरान पाक का जो तदरीजी सफ़र था, यानी ग्रेजुअली कुरान पाक जो पाइल अप हुआ कि जिस शक्ल में आज आपको मुझे दिखता है, ये अल्लाह के नबी के दौर में या आप कह लीजिए कि नज़ूल के वक्त पे इस तरह एक जिल्द में तो नहीं था, तो उसी तदरीजी मरहले में ऐसा हुआ कि पहले लोग एक आयत के पूरा होने के बाद एक डॉट लगाते थे, नुक्ता। अब कभी वो पढ़ा जाता, कभी ना पढ़ा जाता, कभी ऐसा लगता कि एक ही आयत है। तो बाद में फिर उलमाए कराम ने ये लफ्ज़, हम कहते हैं ना कि पहली आयत, दूसरी आयत, तीसरी आयत, तो लफ्ज़ आयत लिखना शुरू कर दिया। आयत एक, आयत दो, आयत तीन, तो अब उसमें फिर शुबा हो रहा था क्योंकि आयत लफ्ज़ खुद अरबी का लफ्ज़ है, कुरान की आयत है। बिल आखिर होते होते इस पे इत्तफाक हुआ कि जो गोल ता की ता है ना, इसको आयत की जगह लिखना शुरू कर दिया जाए। बात समझ आई? तो यहाँ लफ्ज़ आयत उन पर बात करते हैं। आयत किसको कहते हैं? निशानी को कहते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं आयतुल्लहुमुल अर्दुल मैता। निशानियाँ क्या होती हैं? निशानी का मकसद क्या है? आपकी दादी ने, आपकी नानी ने आपको एक रिंग दी और कहा कि ये नानी की निशानी समझ के रख लो। अब वो दादी नानी चली गई दुनिया से, जब आप वो रिंग पहनती हैं या अंगूठी आप देखती हैं, आप क्या कहती हैं? ये मेरी नानी की निशानी है। क्या मतलब? नानी वैसे भी याद रहती हैं, हर वक्त तो नहीं रह सकती नानी, वो तो कभी कभार ही याद आती हैं जब किसी मुश्किल में पड़ते हैं। लेकिन ये एक फैक्ट है कि किसी की दी ली हुई चीज़ को देखकर हर वक्त ना भी सही, लेकिन कभी ना कभी उसकी तरफ तवज्जो जाती है। बस अब उसको समझिए, अल्लाह सुभान व तआला ने इंसानों की हिदायत के लिए 3 किस्म की निशानियाँ दुनिया में भेजी हैं अमूमी तौर पे, फिर आगे इसकी ब्रांचेस बहुत सारी हैं। एक है वो आयतें या निशानियाँ जिसका तज़किरा इस सबक में है, ज़मीन का आना जाना, घूमना सूरज का, चांद का, इन नफ़ी खल्क़ समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़ लैलि वन नहारि लआयातुल लिउलिल अल्बाब। सूरह आले इमरान से ये बात चलती है। कायनात में जिधर नज़र उठाएं आपको अल्लाह अपने वजूद के साथ नज़र आता है। अल्लाह सुब्हान तआला ने आपसे मुझसे अपना वजूद क्यों छुपाया? ताकि निशानियों के ज़रिए पहचानो। اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے وجود کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے، کسی میں جرت نہ رہے نافرمانی کی، کوئی سر نہ اٹھا سکے، کوئی سر کشی نہ کر سکے، کوئی نخرے نہ کر سکے، کوئی لاٹ نہ دکھا سکے، یہ تو اس کے وجود کے چھپے ہونے کا ایک بینیفٹ لے کر بہت سارے لوگ اس کی اس زمین پہ کھاتے اس کا، پیتے اس کا، رزق اس کا، لیکن بات نہیں مانتے. آپ آزمانا چاہیں تو راہ جاتے کبھی پولیس مین یا اس کی دور سے آتی گاڑی کو دیکھ کر اپنی دل کی کیفیت کو محسوس کریں. سیٹ بیلٹ بندی بھی ہو تو ہاتھ ڈال کے چیک کرتے ہیں بندی بھی ہے، ایک دم خیال آتا ہے گاڑی کے پیپرز پاس ہیں، اور آپ کو تو اور بھی کئی خیال آتے ہوں گے. تو بالکل کسی پولیس مین کا، کسی بڑے کا، کسی مینیجر کا، کسی باس کا سر پہ آ کے کھڑا ہو جانا ہمارا ہوش گم کر دیتا ہے، ہماری گھگی بن جاتی ہے، ہماری آواز نہیں کھلتی ان کے سامنے، ہم گھبرا جاتے ہیں جب کوئی بڑا ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو آپ سوچئے جب وہ اللہ اکبر سب سے بڑی ذات آپ کے میرے سامنے آ جائے تو کیا کوئی نخرے کرے گا؟ آپ اسی قرآن میں پڑھیں گے قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وجود کے ساتھ نزول فرمائیں گے اس دنیا میں، تو لوگ جھکنا چاہیں گے، فلا یستطیعون، نہیں جھک سکیں گے. کیوں؟ کمریں تختے کی بن جائیں گی. سورت قیامت میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور 29ویں پارے میں ایک دو اور جگہ پہ بھی اس کا تذکرہ ہے. تو اللہ نے خود کو چھپایا. کیوں چھپایا؟ مجھے میری نشانیوں سے پہچانو. عقل میں اللہ نے اپنی پہچان رکھی، فطرت میں اللہ نے اپنی پہچان رکھی. عقل کیا ہے؟ مومن، کافر، فاجر سب کی عقل ہے. سورج نکلتا ہے سب کو دکھتا ہے، چاند آتا ہے سب دیکھتے ہیں، ہوا چلتی ہے سب کو محسوس ہوتی ہے. ان نشانیوں کو دیکھ کر ہر بندے کی عقل، شرط ایک ہے کہ وہ عقل عقل سلیم ہو. جب عقل سلامت ہوتی ہے نا تو ہر چیز کو دیکھ کر بندہ سوچتا ہے یہ کون ہے. اس کی ایک مثال آپ قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشاہدہ حق کا سفر پیش کیا. سورج کو دیکھا، کہا حاضر ربی، چاند کو دیکھا حاضر ربی، ستارے کو دیکھا حاضر ربی، لیکن بعد میں کہا نہیں، نیلا احب الافلین، میں چھپنے والوں اور ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کیا پتہ چلا؟ عقل کے ساتھ دیکھیں تو یہ کائنات اللہ کی ایک کھلی ہوئی کتاب دکھتی ہے. اس کے برعکس دیکھیے ایک دوسری نشانیاں آیتوں کی قسم وہ ہے جو آپ کے میرے سامنے اس وقت کھلی ہوئی ہے، قرآنی آیات. عام ترتیب کے اعتبار سے فرق تھوڑا بہت 19-20 کا آتا ہے کمپیوٹر کے ساتھ آج آگے آنے سے، لیکن 6600 پلس آیتیں ہیں قرآن پاک میں. ہر آیت ایک سائن بورڈ ہے. سائن بورڈ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کہتے ہیں نا آپ نے ادھر آنا تھا، یہ علاقے کا نام لے لیجئے، راستے میں مائل اسٹون آتے، اب اتنا رہ گیا آپ ادھر. اگر اسپیشلی جب آپ ہائی ویز پر سفر کرتے ہیں تو اگر آپ میں سے کوئی یہاں سے ہالینڈ جائے تو راستے میں سائنز آتے ہیں. یہاں تو آپ نے دیکھا بڑے بڑے بلو سائنز آتے ہیں نا، لیکن ہم پاکستان میں عموماً وہ بجیاں سی بنی ہوتی ہیں سفید سیمنٹ کی، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے لاہور اتنے کلومیٹر، شاہکوٹ اتنے کلومیٹر. آپ اور میں ان نشانیوں کو دیکھ کر کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ جہاں پہنچنا ہوتا ہے. لاہور جانا چاہیں تو آپ اس کی نشانیوں کو فالو کرتے جائیں، جانا گجراں والے اور نشانیاں لاہور کی دیکھتے رہیں گے، کبھی گجراں والے نہیں پہنچیں گے. اس کو سمجھیے، یہ کائنات کی ہر چیز اور قرآن کی آیت اللہ تک پہنچاتی ہے آپ کو مجھے. جس کا سفر اللہ کی طرف جانے کا ہے اور جو اپنے اس وجود کو اللہ تعالیٰ سے متعارف کروانا چاہتا ہے، وہ تو کائنات میں نکلے گا تو سورج کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے گا، ہوا دیکھے گا، بادل دیکھے گا، بدلتے موسموں کو دیکھے گا تو اللہ کی طرف جائے گا، اور قرآن کھولے گا گھر آ کے تو بھی اللہ کو پائے گا. اور میں اس کو اکثر سمیٹ دیتی ہوں اس بات میں کہ کائنات اللہ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے، اور اس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے. قرآن تو یہ ہم 1-2 بلین مسلمان ہی پڑھیں گے نا، ہم نے دوسروں کو دینا ہے پھر ہی وہ پڑھیں گے، لیکن کائنات کی یہ نشانیاں اور آیتیں سب کھول کے دیکھ رہے ہیں دن رات. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے پہلی اور دوسری یہ دو چیزیں دے دیں. تیسری چیز آیات کی نشانیوں کی جو قسم ہے وہ میری آپ کی اپنی زندگی میں ہونے والے حالات اور واقعات ہیں. اس کو آیات الانفس کہتے ہیں، نفسوں میں نشانیاں. اس میں تو سب سے پہلے آپ کا میرا وجود ہے، سر سے پاؤں تک دیکھیے، اور ایک گود میں آئے معصوم بچے کو اور ایک چند سالوں میں آپ ہی کے قد کے برابر ہوتے بچے کو دیکھیے، یہ نشانیاں نہیں ہیں کیا؟ بچے کا دنیا میں آنا نشانی نہیں ہے؟ تو جو اپنی ذات اور اپنے حالات اور واقعات سے اللہ کو نہ پہچانے وہ کدھر جائے گا؟ تو لہٰذا ساری بات کا خلاصہ जिसने रब को पाना है उसके लिए अब कोई उजर नहीं है। हम मुसलमान इस पे खुशकिस्मत है कि एक तीसरी किस्म की निशानी हमारे पास है और वो वही है। रसूल ने आकर बताया, हमने मान लिया, तो लिहाजा आज के बाद कायनात आपके मेरे लिए किताब है। जब आप यहाँ से फारिग होकर छुट्टी के बाद निकलेंगी तो आपने गाड़ी में बैठने के बाद एक नज़र आसमान को देखना है और उस पे तैरते हुए बादलों को देखें और उनके अंदर की चमक को तो देखें। क्या कोई पल्स के अंदर चमक होगी जो दूधिया बादलों के अंदर चमक है? और क्या आपका मेरा आसमानी दुपट्टा होगा जो इस आसमान का खूबसूरत फिरोजी रंग है? और जब चलेंगे, अगर वॉक करेंगे, तो ज़मीन को देखिएगा, जिसकी तरफ देखने का अल्लाह इशारा देते हैं, वायत लहुमुल अर्दुल मैता। ज़मीन मुर्दा थी, बंजर थी, बेजान थी। सवाल पैदा होता है कि ये निशानी है किन लोगों के लिए? ज़मीन की बात है या आसमान की बात है? लेकिन यहाँ ये कहकर इन लोगों के लिए इसमें निशानी है, तो ये वो लोग हैं जो तकब्बुर से भरे पड़े हैं, जो कहते हैं वी डोंट बिलीव इन गॉड, जो ये कहते हैं हम किसी खुदा को नहीं मानते। और शायद आपका वास्ता पड़ा हो इतनी मॉडर्न दुनिया से नहीं, लेकिन आपको एक छोटी सी खबर दे दूं, आज के दौर का फैशन रिवाज ये है, आई डोंट बिलीव इन गॉड। पहले लोग कहते थे वो गॉड, आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको बिगाड़ के कहो गौश, कुछ साल तक गौश चलता रहा, और आज कहते हैं नो गॉड। आज मैंने जितने भी लोगों के साथ ट्रैवलिंग के दौरान बात की, उनमें से मोर देन 70% लोग कहते हैं वी डोंट बिलीव इन गॉड। और ये बातें अमूमन जहाज में हो रही होती हैं, जब वो भी जहाज में होते हैं और हम भी, तो पूछते हैं ये जहाज कौन चला रहा है, कायनात कौन चला रहा है, खुद ही चल रही है, को इंसिडेंसेस, ये वाकयात का एक तसलसल है, ये खुद ही हो गया, तो पायलट को बंद करके वापस ले और खुद ही चलेगा जहाज। लेकिन लोग नहीं मानते। एक दफा एक शिप के सफर के दौरान एक सिस्टर से बात हो रही थी, तो बिल्कुल मैं और वो बाहर खड़े थे जहां से शिप बिल्कुल तैरता हुआ दिखता है। तो उस वक्त मैंने उससे कहा कि ये बताओ कि इस शिप को फिर कौन चला रहा है? इसका जवाब नहीं होता। तो याद रखिएगा, अल्लाह को जिसने नहीं पाना ना, वो नहीं पाएगा। आपका मेरा काम क्या है कि लोगों के लिए इस कायनात को एक किताब बना दें? हम कहते इतने कुरान बांटे, इतना कुरान बटा, ये हुआ वो, तो अरबी जानेंगे तो पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन में इंटरेस्ट होगा तो पढ़ेंगे, और जिसका दिल करेगा उसको खोलेगा, जिसका दिल नहीं करेगा वो नहीं करेगा। लेकिन कायनात की किताब ना चाहते हुए भी हर एक पढ़ता है। तो मेरा आपका काम है गौर व फिक्र करवाना। याद रखिए, एक लम्हे का गौर व फिक्र किसी एक चीज़ पर सारी रात की इबादत से अफजल है। क्यों सुबह फजर के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन नफी खल्क समावाती व अर्दी वाली आयात पढ़ते थे, जो सूरह आले इमरान का आखिरी रुकू है? क्योंकि उसमें कायनात पे गौर व फिक्र है, और गौर व फिक्र का नाम साइंस है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन निशानियों पे जो लोग गौर कर रहे हैं, बड़ी बड़ी लैब्स में बैठे हुए और नासा में रिसर्च के नाम पर और बड़ी बड़ी वो स्पेस शटल्स बना रहे हैं, वही गॉड को नहीं मानते। आप हैरान होंगे, मुस्लिम हीरोज़ अगर आप कोर्स में ज्वाइन रहे तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है मुस्लिम हीरोज़ का। सबसे पहले दौर के जो बड़े साइंटिस्ट थे वो सब मुस्लिम थे, आप उनके नामों में इस वक्त ना उलझे। और आइडियल सिचुएशन ये है, अल्लाह को मानने वाला जब लैब में काम कर रहा है और जब वो फिजाओं में काम कर रहा है, सितारों पे कमंदे डाल रहा है, पूरी दुनिया में जो इन्वेंशंस हो रही हैं और बड़े बड़े साइंटिफिक राज खुल रहे हैं, साथ ही साथ लोगों के दिल में इस्लाम भी खुलता, अल्लाह भी खुलता। आज भी इस वक्त बात कर रही हूँ तो मुझे अपना एक उस याद आ रहा है मंजर। ख्रिस्टन में थे हम लोग और वहाँ एक ना आर्चरी है। आर्चरी क्या होती है, रात को जाते हैं वहाँ अंधेरों में, दूरबीनें बड़ी बड़ी नसब की हुई हैं, तो वो बिल्कुल क्लोज से आसमान आपको दिखाती हैं। आप ज़मीन पे होते हैं लेकिन जब आप उनमें से देखते हैं तो डिफरेंट एंगल्स हैं, यकीन कर ऐसे लगता है फिजा में तैर रहे हैं। फिर उसके बाद अंदर उन्होंने एक ऐसी सिनेमा सा बना के तो उसमें डॉक्यूमेंट्रीज चलाते हैं। आज भी मैं अपने दिल की वो कैफियत महसूस करती हूँ। हमारी एक उस्ताद आई थी, हम उनको भी वहाँ लेकर गए, उन्होंने कहा मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी ये मंजर देखा ही नहीं है। उस वक्त हमें लगा रब बिल्कुल ये जंगल में है, जंगल में होती हैं वो, क्योंकि अंधेरे में ये सब कुछ दिखता है। तो मैं ये सोच रही थी कि जो ये सब बना रहे हैं उनको खुदा नहीं दिखता, वजह क्या, कसूर किसका है? मेरा कसूर है, हम मुसलमानों का कसूर है। अगर हमने लोगों को रब से जोड़ा होता तो इन जगहों पर बैठे हुए लोग भी रब वाले होते। आज यही तो हमारा आलमी है। अगर आपको मैं दो लफ्ज़ों में समेट के बाद आगे ले जाऊं, आज हमारे बच्चे किस सिस्टम से गुजर रहे हैं, उसमें साइंस भी है, उसमें केमिस्ट्री भी है, उसमें फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, जोलॉजी भी है। वो हफ्ते में 5 दिन मेरा ख्याल है 20 घंटे वो चीज़ें पढ़ पढ़ा के आते हैं जो अल्लाह से करीब कर सकती हैं। क्या जोलॉजी अल्लाह के करीब नहीं करती, बॉटनी नहीं करती, पौधों परिंदों इंसानी साख को देकर अल्लाह याद नहीं आता? पर मसला क्या कि क्यों नहीं हमारे बच्चों को समझ आता, वो उस्ताद नहीं है सामने जो अल्लाह से जुड़ा हुआ है। अधूरे लिबास में मौजूद उस्ताद कहाँ अल्लाह से करीब करेंगे? और इर्द गिर्द का शोरगुल इतना है। इंसानियत का वो आइडियल दौर होगा जब ये दोनों तालीमें जमा हो जाएंगी। कुरान पढ़ाने वाला ही आपको कायनात पे गौर कराएगा और कायनात के राज खोलने वाला कुरान से जुड़ा होगा। अल्लाह से दुआ कीजिए वो वक्त हमारी ज़िंदगी में तो ज़रूर आ जाए। नबी सल्लम से लेकर 1000 साल तक यही दौर था। मुसलमान इल्म दोस्त भी थे, कायनात दोस्त भी थे। जब से हम सुस्त होकर घरों में बैठे, आज आप बताइए कोई एक रिसर्च होती है मुसलमानों से? कभी आपने सुना मुसलमानों ने स्पेस शटल बनाई? पाकिस्तान में भी नासा नाम का एक इदारा कायम हो गया। किसी छोटे लेवल पे तो काम हो ही रहा होगा, लेकिन फर्स्ट हैंड इन चीज़ों में मुसलमानों की ज़रूरत है। और ऐसे ऐसे फैक्ट्स मौजूद हैं आज भी कि जब ये लोग चांद और इधर उधर जाकर रिसर्चेस करते हैं तो वो उन फैक्ट्स को छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं? एग्जैक्टली कुरान की आयतों पे वो फिट होती हैं। ये मैंने 2 दिन पहले भी एक आर्टिकल पढ़ा, भी आपके साथ वक्त की कमी की वजह से शेयर नहीं कर सकती। उन्होंने इसलिए छुपा दिया, एग्जैक्टली जो उन्होंने देखा है वो कुरान में मौजूद है। उन्होंने कहा अगर ये फैक्ट खोल दिया तो लोगों ने कहना कुरान सच्चा, और वो बड़ा नोन फैक्ट है। आप और मैं क्या कहते हैं? वापस आइए। तकब्बुर से भरे हुए और इनकार से भरे हुए सीनों को अल्लाह कहता है, कभी तुमने गौर किया? तुम उस नबी के मुकाबले में चिढ़ दिखा रहे हो जो अल्लाह से जोड़ता है तुम्हें, उस अल्लाह से जोड़ता है जिसकी निशानियां चारों तरफ मौजूद हैं। गौर व फिक्र तो करके देखो। और ये निशानी क्या है कि कायनात का रब एक है। बेजान जमीन एक निशानी है। जमीन मुर्दा होती है, आह यही ना हा, फिर हमने उसको जिंदगी बख्शी। ये कब होता है? जब बारिश जाती है। लिख लें, यहां जिंदगी बख्शने से मुराद बारिश बरसाना है। फिर बारिश बरसती है तो अंदर को छुपा हुआ बीज है वो पसर पड़ता है। और वह खरच ना मिनहा हब्बन, फिर एक चंद दिन के सफर के बाद, फिर थोड़े दिन के अंदर उस बीज से एक छोटा सा पौधा निकलता है, एक बीज फूट पड़ता है। और एक वक्त आता है पकते पकते फमिन हुया कुलून, फिर वो उसमें से खाते हैं। वमा जअलना फीहा जन्नात मिन नखीलिम व अनाबिम व फज्जरना फीहा मिनल उयून। और फिर जब ये सारा मंजर देख लिया, ये सब कुछ हो गया, तो फरमाया हम बना देते हैं उसमें खेतियां। कैसे? बाग जन्नातिन, हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और इसके अंदर से चश्मे फोड़ निकाले ताकि ये इसके फल खाएं। बताओ तो सही, वमा अमिलत हुई दी हिम लिया खुलू मिन समरी ही, ताकि ये खाएं इसके फल। वमा अमिलत हुई दी हिम, ये सब कुछ इनके हाथों ने तो नहीं किया, तो फिर अफला यशकुरून, फिर वो शुक्र क्यों नहीं करते? अगर आप सिर्फ इन 3 आयतों में निशानियां देख लें तो बेजान जमीन निशानी है, उसके ऊपर बारिश का पड़ना दूसरी निशानी, जमीन में से दाने का फोड़ के निकाल देना जमीन को, जमीन का फटना, दाने का निकलना तीसरी निशानी। आप जरा जाके सूखी मिट्टी को हटाएं, आपकी उंगली से नहीं हटेगी। कितने टूल्स यूज करता है किसान, तो फिर उस जमीन के अंदर उसका कुछ ना कुछ जाता है ना। पतला सा बीज, इतनी छोटी सी कोम्पल कैसे निकल आती है? यकीन की कुव्वत, सर उठा के जियो, मुझे निकलना है, मुझे इजहार चाहिए। इसी तरह हमारा ईमान भी है। सच्चा ईमान कभी नहीं छुप सकता। याद रखिए कि सच्चा ईमान है ना आपके मेरे अंदर, तो हम इस ईमान का इजहार जरूर करेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम ईमान लाने का दावा करें और कि अंदर से बड़ा ईमान है बस निकल नहीं रहा, अंदर से बड़ा ईमान है बस इजहार नहीं हो रहा, लोगों से डर लगता है, अंदर बड़ा ईमान है लेकिन अल्लाह की मर्जी की नहीं बन सकती, झूठ बोलते हैं हम लोग। अल्लाह कहते कैसे वो निकलता है? ये निशानी है। और फिर वही बीज कभी खजूरों के और कभी अंगूरों के बागों में आते हैं। खजूर को देखिए तो काली लेकिन मीठी, शक्ल की इतनी खूबसूरत नहीं, टेस्ट बड़ा मीठा। और देर पा, निशानियों पे गौर करना है ना, तो ये गौर व फिक्र है। खजूर कितने भी महीने के सालों के एतबार से खराब नहीं होती, और अंगूर आप खुद गवाह हैं, जब आता है फ्रेश धो के खा लें फ्रिज में रख के एक दिन में, वरना वो ढीला पड़ जाएगा। जरा सा सख्त हाथ लगाओ तो उसके आंसू निकल आते हैं, इतना नाजुक, खूबसूरत कितना, रकीक कितना, लेकिन आप उसको हाथ रखना है तो सुखा के उसका वो किशमिश बना लीजिए, मनक्का बना लीजिए, लेकिन ये कौन करता है? बीज जो क्या, गुठली देख लीजिए खजूर की, सख्त पत्थर की दांत से तोड़ नहीं सकते, सारा दिन चूसते रहे तो वो गलती नहीं है। और उसी गुठली को जब इस मट्टी में डाला, किसने तोड़ा, किसने क्रश किया, किसने उसको फोड़ के उसके अंदर से बीज निकाल दिया? अल्लाह ताला सूरत अल अनाम में कहते हैं फालिकल हब्बी व नवा, ये अल्लाह की सिफत है, नाम है, मैं हूं फाड़ने वाला, हब और नवा को, गुठलियों को भी मैं फाड़ता हूं और दानों को मैं फाड़ता हूं। तो जब वो इतनी सख्त खजूरों को फाड़ सकता है, उसकी गुठलियों को फाड़ सकता है, तो सख्त दिलों को वो नरम क्यों नहीं कर सकता? ये निशानी है कि कभी अपने आप को हिदायत से दूर ना करो। जब तुम हिदायत से दूर होते हो ना, तो असल में दिल को सख्त करते हो। लेकिन जिस तरह बीज पे बारिश का पानी पड़ा तो यही ना हा, इसी तरह सख्त दिलों के ऊपर जब कुरान का पानी पड़ता है तो दिल फूटते हैं। याद कर लीजिए, फमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम। तो ये कुरान की तालीम बड़ी ज़रूरी है, किसके लिए? बड़ी खूबसूरत एक कोटेशन पढ़ी थी इंग्लिश में, जिसका खुलासा क्या था कि कुरान हील्स, कुरान इलाज करता है ब्रोकन हार्ट्स का, और कुरान सॉफ्टन, सॉफ्ट करता है किसको? हार्ड हार्ट्स को। सख्त दिल लोगों को कुरान नरम कर देता है, और दुखी टूटे हुए दिल, माशरे के ठुकराए हुए, बीमारियों, तकलीफों, इंसानी रवैयों से मजबूर होकर दुखी लोगों को कुरान जब मिल जाता है, तो वो हकीकत में फिर अपने अंदर एक ऐसा ईमान महसूस करते हैं कि शख्सियत बदल जाती है। तो कुरान के लिए आइडियल दो किस्म के लोग हैं, नंबर एक सख्त हार्ट, सख्त दिल लोग, और दूसरे दुखी दिल। इस पे गौर करें, जिस जिस को डिप्रेशन में देख रहे हैं पकड़ धकड़ कर ले आइए, और जिस जिस को बीमारियों से उकताया हुआ देखते हैं उसको पकड़ कर ले आइए। और इसी तरह जो हादसों का शिकार, कोई बच्चे का गम, कोई शौहर का गम, कोई बेटी का घर टूट गया, ये कुरान उसके लिए शिफा बन जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं इसके अंदर से चश्मे फोड़ना। ये अब अगली निशानी देखिए। आपको कभी पहाड़ी इलाकों में सफ़र का मौका मिला? अल्लाह ने मुझे इस मामले में बहुत ब्लेस किया। शुरू से बचपन से ही चश्मे, आबशारें ऐसे लगती थी जैसे वाकई पहाड़ों के आंसू हैं। पाकिस्तान में रहते हुए छोटे छोटे देखे, अल्लाह ताला ने दिखाया, जैसे हम भी छोटे थे तो चश्मे भी बड़े लगते थे। थोड़े से बड़े हुए और शऊर आया, सबसे पहले जिस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा इस बात पर गौर व फिक्र का मौका दिया था, वो नियाग्रा फॉल को देखना था। आप में से जो भी लोग कनाडा से मुतल्लिक हैं या कभी गए आए हैं, लफ्ज़ नियाग्रा आपके लिए नया नहीं है। जब मैं वहाँ खड़े होकर उन पहाड़ों के अंदर से दरियाओं से भी बड़ी आबशारें निकलती देखती थी, तो मैं यही सोचती थी ये कौन इन पहाड़ों में से पानी लेकर आ रहा है। सामने से देखें एक रूप, पीछे से देखें दूसरा रूप, करीब जाकर देखें तीसरा रूप, रात को देखें चौथा रूप, यानी वहाँ खड़े होकर वाकई जितना अल्लाह याद आता है शायद ही कभी कोई आता हो। फिर उसके बाद हमें पिछले 2 या 3 साल से मुसलसल नॉर्वे में हर समर में हम एक ट्रिप लेकर जाते हैं अल्लाह के हुक्म से साथियों को, जैसे आप लोग हैं वैसे वहाँ भी हैं, तो एक ट्रिप होता है समर के अंदर। तो पिछले साल जहाँ हम गए 2 साल से, यानी पिछला और उससे पिछला, इतनी बड़ी बड़ी आबशारें हैं कि यूं सर उठा के देखें, ऊंचे पहाड़ और वहां से गिरता पानी। और एक ऐसी जगह जहां 7 आबशारें इकट्ठी गिरती हैं, उसको 7 सिस्टर्स कहते हैं। जाके देखो, और अफला यशकुरून, क्या तुम शुक्र अदा नहीं करते? यकीन कीजिए, जिसने रब से प्यार कर लिया उसके लिए 24 घंटे का क्लासरूम खुल गया, अपने और अपने बच्चों को फितरत और कायनात से करीब करने के लिए गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ये सब कुछ क्यों पेश करते हैं कि गौर करो, तुमने बनाया है, तुम्हारे हाथों का बना हुआ है। क्या आप और मैं एक बीज भी डाल सकते हैं? और बीज तो किसान डालता है, निकाल सकता है। कितने बीज जमीन में जाते हैं, आधे घंटे बाद किसान को भी नहीं पता किधर गया, किस में उलझा, लेकिन हर दाना जमीन पूरी अमानत के साथ खोल के बाहर ले आती है, इधर गिरा था तुम्हारा दाना इधर। असल में निशानी यह है कि जिस तरह जमीन के दाने की हिफाजत करके अमानतन तुम्हें 1 के 700 करके वापस करती है, कल कब्रों में से इस जमीन ने तुम्हें तुम्हारे वजूद के साथ निकालना है। यह है निशानी इसमें। यह सारा कुछ जो है ना, ये कायनात में कियामत की निशानी है कि कल जब दुनिया से यह सारा कुछ मामला खत्म किया जाएगा, तो एक एक रूह और एक एक जो कमर की हड्डी है वो गलेगी और उसमें से एक एक वजूद होगा। हदीस में आता है कि सूर जब फूक जाएंगे तीनों, तो उसके बाद फिर एक बारिश होगी और पूरी जमीन पे पानी हो जाएगा, और आखिर फिर कब्रों में से जिस्म उगेंगे। कुरान में आता है अम्बत ना का लफ्ज आता है, नबाता, उगेंगे कैसे? वो जो एक बैकबोन का एक मोहरा होता है जो कभी नहीं गलता, मट्टी में सब कुछ घुल जाता है लेकिन वो अभी महफूज है सबका, जो आज तक फौत हुए हैं उसके अंदर पानी पड़ेगा तो वो बीज का काम देगा और लोग कब्रों में से ऐसे उगेंगे जैसे पौधे उगते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, अल्लाह को पता है। तो सारा कुछ किस बात की निशानी है कि अल्लाह एक है और शिर्क की कोई बुनियाद नहीं है इस कायनात में। और ये जो बात बताई है कि खाएं अपने फल जो आप इनको दिए जा रहे हैं और अपने हाथों से, तो यहां बताया गया कि आज अगर तुम कोई आर्टिफिशियल चीजें भी बनाते हो तो वो भी तो फिर रियल चीजों से बनती है ना। आप देखिए मसलन आप मुरब्बा बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, किससे बनती है? हर चीज में कुछ ना कुछ नेचुरल डलता है। ये तो घर में किचन में काम करते हुए भी बहुत सारे लोग सोच सकते हैं, लेकिन जो चीज हैरतनाक है ना वो क्या है, कॉस्मेटिक की दुनिया। आज आप देखिए हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों डॉलर्स खर्च हुआ जा रहा है कॉस्मेटिक्स के नाम पे। एक दो महीने पहले एक सिस्टर थी तो उनसे मुलाकात हुई, तो वो जो है नेचुरल चीजों के साथ ब्यूटी केयर का काम करती हैं। उन्होंने जो फैक्ट्स मेरे सामने खोले मैं हैरान रह गई। फेशियल करते में वो क्या यूज करती हैं और सब कुछ घर की चीजें, आलू है और कह लीजिए कि लेमन है और दूध है। और वो कहती है ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज इस वक्त चीजें बनाती हैं जो अच्छी वाली कंपनीज हैं वो एग्जैक्टली इनके एक्सट्रैक्ट डालती हैं, और जो घटिया चीज बिकती है उसमें वो इसमें केमिकल डाल के आर्टिफिशियल चीजें डालते हैं। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट अप्रूव नहीं हो सकता जब तक उसमें कोई नेचुरल चीज ना हो। सिर्फ केमिकल्स के साथ सिर्फ ऐसी ब्यूटी केयर की चीजें नहीं बनती। किसने बनाया? अल्लाह कहते वह मामिला तय दी है, क्या उनके हाथों ने किया है। अब इसको सारा सा देखकर अगर एक इंसान गौर करे कि ये कायनात क्यों बनी, असल में इन छोटे छोटे फिक्रों में अल्लाह ने मिसाल दी कि सुबह और शाम का सफर जिंदगी के लिए गुजार रहे हो, तुम इसको आम बात समझते हो? देखिए ना आप और मैं, आप इधर है, कल भी अल्लाह के हुक्म से हम इधर थे, ये बीच में क्या हुआ? अगर कोई हमें कल इस वक्त इधर देखता और आज फिर आके देखे तो कहेगा लगता कल से तुम इधर ही बैठे हो। लेकिन आप और मैं इस बात के गवाह हैं कि हमारी आंखों ने कल से लेके आज तक कितनी निशानियां देखी। धूप ढली फिर सूरज ढला, हो सकता है बारिश हुई फिर रुकी, फिर शाम हुई, मलगजा हुआ, फिर अंधेरा हुआ, फिर डार्क हुआ, रात हुई, फिर सहर हुआ, फजर हुई, ग्रे हुआ, वाइट हुआ, फिर सनराइज हुआ, उसके बाद कर्क करा के फिर मैं पहुंचे। कौन कर रहा है इतनी चेंजेस? आप तो घर में चीज अपनी उठा के ना रखें 2 दिन पड़ी रहेगी, कोई नहीं छेड़ेगा। आप फ्रिज में चीज खोल के ना रखें तो बाहर पड़ी खराब हो जाएगी। कायनात को कौन चला रहा है? तो असल में ये अल्लाह के वजूद की निशानी है कि हर साइन बोर्ड को देखो और अल्लाह के साथ कुर्बत हासिल करो। बेजान जमीन के अंदर किसने ये जिंदगी का वजूद दिया? और ये बड़ी बड़ी चीजें अगर अल्लाह ताला पेश ना करता तो कैसे होता? देखिए बजाहर तो हमें जमीन ऊपर से दिखती है लेकिन अगर आप इसके अंदर मुख्तलिफ तहें देखें तो हर तह का एक अलग काम है। ये एक जियोलॉजी का पूरा चैप्टर है, आप हैरान होंगे। इसका भी अल्लाह ने मौका दिया, एक दफा हम किसी मुल्क में थे तो वहां जो ब्रदर हमें सिटी का टूर करा रहे थे वो जियोलॉजिस्ट थे और वो पहाड़ी इलाका था, और उन्होंने जो कुछ फैक्ट्स बताए मुझे लगा सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब जियोलॉजिस्ट हो सकते हैं। जियोलॉजिस्ट कौन? जो जमीन की तहों को खोदते हैं। वो कहते हैं ऊपर से रंग देख के हमें पता लग जाता है कि इसके नीचे सल्फर है, इसके नीचे कॉपर है, इसके पीछे पानी है, इधर ऑयल है, कुछ है। वो ऑयल कंपनी में काम करते थे जहां से ऑयल ढूंढते हैं ना, कहते हैं हम एक जगह डिटेक्ट करके अपने आलों के साथ पूरा देख चुके होते हैं कि इधर से ऑयल निकलेगा। हम जूं ही अपनी मशीनरी सेट करते हैं महीना दो उसमें लग जाते हैं, जिस दिन हम जाके वहां खोदते हैं वहां कुछ नहीं होता, किधर गया? पता चलता है ऑयल जमीन के अंदर यूं घूमता है जैसे सांप घूमता है, कुटली की तरह। यानी मैं आपको फैक्ट्स नहीं बता सकते जो उस दिन मुझे पता चले, और ये कुरान में ही आए थे। पानी घूमता है फिर वो ढूंढते हैं, फिर उसका पीछा करते हैं किधर गया कहाँ गया। कई दफा आपने कुएं खोदने वालों को कहा होगा कि पहले खोदा था पानी था आज नहीं है। ये सब कौन कर रहा है? ये वो कर रहा है जिसकी किताब आप और मैं पढ़ने आ रहे हैं, ये वो कर रहा है जिसकी दावत दिन रात मुझे आपको मिलती है, ये वो है जिसके रास्ते में हेल्प करने की दावे किए जाते हैं, ये वो है जो कहता है लोगों निकलो मेरे रास्तों में। और इंसान का जरा एटीट्यूड तो देखिए, वक्त ही कोई नहीं, फुर्सत बड़ी नहीं, मसरूफियत बड़ी है। मैं कहती हूं हमसे ज्यादा बड़ा मुतकब्बिर कोई नहीं होगा जिसके पास अल्लाह के लिए वक्त नहीं है जिसने वक्त दिया, और उससे बड़ा मुतकब्बिर कोई नहीं होगा जिसको अल्लाह ने माल दिया और उसके पास अल्लाह के लिए माल नहीं है, और जिसको अल्लाह ने औलाद दी और उसके पास औलाद नहीं है अल्लाह को देने के लिए। अगर ये आयतें और ये सूरह यासीन है जिसको लोग कई मुबीनों के साथ पढ़ते और कई की दफ़ा पढ़ते और 70-70 बार पढ़ लेते, अगर एक दफ़ा गौर करके इन आयतों से गुजरा जाए, ये गुजरने ही नहीं दे रही। کہ غور کرو میں ہوں. ہر آیت کے پیچھے سے ایسے چپکے سے ایک سورج کی طرح چمکتا وجود دکھ رہا ہے کہ میں ہوں, مجھے پہچانو. اور یہ کیا کچھ ہے, زمین و آسمان, اور آسمان سے بارش, زمین سے فصل, اس کے بیچ میں کیا کچھ ہے, کہاں کوئی گیس رکھ دی, کوئی بارشیں ہیں, کوئی کچھ ہے, تم اس پہ غور کرو. اور پھر دیکھیں تناسب, چار بڑے بڑے سبب ہیں ہمارے اس کائنات کے وجود کے چلنے کے, کہ جس میں ایک کیا ہے کہ سورج اور زمین کا رابطہ ہے, ایک خاص فاصلے پہ ہے. اوپر یہ جو ایٹماسفیئر ہے جس کو آپ اور میں فضا کہتے ہیں, یہ ایک دوسری چیز ہے جو ہماری ان فصلوں کے پکنے اور بارش کے آنے میں مددگار ہے. پھر زمین کے اندر مختلف مادے رکھ دیے, کہیں سلفر ہے کہیں کچھ ہے, اور اوپر ایک ایسا پیارا سا پرت چڑھا دیا کہ اس کو کھود کر اس میں بیج ڈالتے ہیں. یہ ایک پورا پروسیس ہے, جیسے یہ گھر بنتے ہیں نا, اسی طرح زمین کے نیچے پوری تہیں ہیں جس کے اندر سے ایک پودا نکل کر آتا ہے, جس میں سے معدنیات نکلتی ہیں. تو اس رب کی قدر کرو, اس کے آگے جھکو, اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھو, اس کو بڑا سمجھو.
وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ